होना भी से पूरा
ध्यान रखना बंद हो रहा है
शिशि रसाचार्य
श्रीला स्वरूप गोस्वामी जी का तिरुभाव उत्सव है। आज ही के दिन ये नित्य लीला में यहीं पर प्रविष्ट हुए। छोटे से उम्र में ही राज्य इत्यादि में राज्य मंत्री हुए और वहां से उन्होंने छोड़ करके ये वृंदावन में शरण ली चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। एक दो बार यहां से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वो नीलाचल धाम में गए, महाप्रभु जी का वहां दर्शन किया। महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिए, उनको अरूप गोस्वामी दोनों सनातन गोस्वामी दोनों को आदेश दिया कि हमारे वृंदावन में जो ब्रज के तीर्थ हैं वो लुप्त हो गए हैं, विग्रह लुप्त हो गए हैं, उनको पुनः प्रकाशित करना तुम लोग, और विशेष करके भक्ति ग्रंथों का और उसमें भी भक्ति रस ग्रंथ जो है उनको प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने विभिन्न परिकरों को विभिन्न प्रकार के आदेश दिए थे, जिनमें उन्होंने स्वरूप दामोदर जी को रसमयी उपासना को प्रकाश करने के लिए आदेश दिया। इन्होंने दो प्रकार के कड़चे बनाए, एक रसमयी उपासना का दही पथ और दूसरा अंतर पथ। उसका अंतरंग जो भीतर का पथ था, अंतरंग पथ, उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी को और रघुनाथ दास गोस्वामी को वो दिए जिन्होंने अपने गले में हार बनाया, उसी को रूप गोस्वामी ने पीछे से भक्ति गोस्वामी सिंधु उज्जवल नील मणि में, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुष्मांजलि ब्रजरस ब्रज विलास स्तव और विशेष करके विलाप कुष्मांजलि में सेवा कैसी की जाती है, सेवा का प्रकार। ब्रज विलास में संबंध, किसके साथ में कैसा हम व्यवहार करेंगे ब्रजवासियों के साथ, यशोदा मैया, नंद बाबा, वसुदेव जी, देवकी जी, ललिता विशाखा, जोग माया, जितने भी स्थान हैं, जितने भी परिकर हैं महाप्रभु कृष्ण के अंतरंग परिकर, विशेष करके चंद्रावली इत्यादि के साथ में परस्पर कैसा व्यवहार होना चाहिए जो इस भजन में मार्ग में प्रविष्ट होना चाहता है। जब तक यह संबंध ज्ञान नहीं होगा तंतर अंतर उसका जो भाव है उसमें वो उपासना मार्ग उसमें नहीं प्रवेश कर सकता। और उन्होंने अपने दान लीला दान खेली कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में सेवा की परिपाटी कैसे होती है, कैसे रस के सामग्रियों को एकत्र कर उसको रस के रूप में कैसे परिणित किया जाता है, ये उसमें उन्होंने दिया, क्योंकि स्वरूप दामोदर ने इनको अच्छी तरह से सिखलाया था महापुरुष के अनुभव। और उनका जो बहिर्पंथा है वो दिया बक्रेश्वर पंडित को महापुरुष के स्वरूप दामोदर ने, और उसमें बहिर्पंथा में बक्रेश्वर पंडित के द्वारा गोपाल गुरु जी और ध्यानचंद्र गुरु उसके बही पंथा को बही पंथा मैंने क्या
अर्चन मार्ग
अर्चन मार्ग, किंतु अर्चन मार्ग मैंने ये नहीं बही मार्ग वाला नहीं, रस भक्ति कैसे होगी, राधा जी का अर्चन, ललिता जी का अर्चन, विशाखा जी का मंत्र, उनका अर्चन, गिरिराज जी का मंत्र, उनकी उपासना, महाप्रभु जी की, चैतन्य महाप्रभु जी की, जितने भी हैं अष्ट सखियों का, अष्ट मंजरियों का, ये सब उनका मंजर, ये अर्थ, वो भी भाव मार्ग से। अब इन दोनों को सामंजस्य करके हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, हमारे नरोत्तम ठाकुर जी, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने दोनों को कैसे मिला करके, अनाधिकारी लोग कैसे उसमें प्रवेश करेंगे, अंत पंथा में बहिर्पंथा से लेकर, ये इन लोगों ने दी। जो लोग कभी विलाप कुसुमंजलि पढ़ा नहीं, जिन लोगों ने उत्कल का बल्लरी पढ़ा नहीं, जिन्होंने कभी कुछ वो पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं आंख में, जिन्होंने कसम खा रखा है कि हम उज्ज्वल इनमणि छुएंगे नहीं, कोटि जन्मों में हम लोग इसके लिए योग्य नहीं, तो क्या ये सब
करेंगे?
गौड़ीय वैष्णव अर्चन मार्ग के कनिष्ठ अधिकारी नहीं है, अथवा केवल श्रवण कीर्तन वाले जो अष्ट वो जो नवदा भक्ति है उसके लिए नहीं आए हैं ये लोग। इसके पहले तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इसके पहले नारद जी ने और सब ने भक्ति मार्ग प्रचलन किया था, सभी ने भक्ति मार्ग प्रचलन किया, किंतु भक्ति भक्ति रस में कैसे परिणत होगा, ये चेतन महाप्रभु जी के कृपा से उनकी मनोभीष्ट करने के लिए ये चेतन महाप्रभु के पहले ये परिकर है रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने क्या किया, अंतर बही जो पथ बतलाया उसको भक्ति, उसमें
भोगी भक्ति विलास
नहीं,
उनका
भगवतामृत में वैधि और रागानुगा में संबंध करके उसको वैधि को रागानुगा में कैसे परिणत करेंगे, इन्होंने उसमें दिया। वैष्णव के तारतम्य से भगवत तत्व का तारतम्य, और भगवत तत्व के तारतम्य से वैष्णव का और भक्ति का तारतम्य, और कैसे उसमें लगाएंगे, अर्चन मार्ग से सबसे पहले प्रयाग में जाओ, और वो मूर्ति पूजक था वो कोई, और मूर्ति पूजक से कैसे उसको आगे बढ़ा करके ब्रज तक पढ़ा दू। ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के गुरु जी नहीं होते तो ये काम सब नहीं होता, ये सब एक लड़िया एक एक मणि एक तार में गुथी हुई है, एक को छोड़ करके दूसरा नहीं चलेगा। तो आज ये रूप गोस्वामी जी की विरह तिथि है। रूप गोस्वामी कौन है? हम कहते हैं कि हम रूपानुगम वैष्णव है, गर्व करते हैं। और यदि ये कहें हम कि पुस्तक बेच देने से ही, अथवा थोड़ा सा अर्चन कर देने से ही, या झाड़ू पोछा कहीं मंदिर में कर देने से ही हमको रागानुगा भक्ति या रूपानुगा हो गए हम, इस चीज को खुद ही नहीं समझते, कोटि कोटि जन्म में भी नहीं होगा, ये समझना होगा। जो रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के कौन से मनोभीष्ट को पूरा किया, मनोभीष्ट क्या है इस पर विचार करो, क्या है मनोभीष्ट रूप गोस्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु है कौन? कृष्ण है, तीन अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आए। उनकी मनोभिलाषा क्या है?
राधा ये प्रणय महिमा की,
ये तीन चीज है। और प्रेम का प्रचार उनका मनोभीष्ट तो नहीं है, किंतु उसका परिपूरक है, अनर्पित चरिंग चिराती इत्यादि, ये देने के लिए। किंतु मनोभीष्ट उनका क्या है? राधा या प्रणय महिमा की दृश्य हुआ नहीं हुआ अष्टादो जिनाथ भति मधुरिमा की दृश्य हुआ मदन भवता तद्भावाड समय जनी सती गर्भ सिंधु हरिंदु। हरिंदु माने कृष्ण, हरिंदु ये कृष्ण चंद्र जी सती माँ के गर्भ की में प्रकट होकर के, और इन तीनों चीजों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ये जगत में पधारे हैं। और अनुसंगिक रूप में नाम के माध्यम से ये प्रेम को देंगे, ये उसका साधन है, उसी के माध्यम से देकर के उसका अपने अनुभव करेंगे, और उस अनुभव की है प्रेम में से कोई छीटा इसके द्वारा प्रदान करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी की अभीष्ट जो है मनोभीष्ट गोस्वामी जी ये मनोभीष्ट स्थापितंग जैन भूतले इसकी स्थापना रूप गोस्वामी ने प्रदान की, इसकी स्थापना की। कैसे स्थापना की, ऐसे स्थापना की कोई भी व्यक्ति ऐसे समर्थ नहीं है। जब ये पुरी में गए तो दो ग्रंथ एक ग्रंथ लिख रहे थे, सत्यभामापुर में गए तो सत्यभामा जी ने उनको कहा ये एक ग्रंथ में मत लिखो, पुर की लीला और ब्रज की लीला एक में मत रखो। आज जबकि वहां पर पहुंचे तो महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्ण को ब्रज से मत निकालो, ब्रज से निकालो साधारण आदमी क्या समझ सकता, सब वही समझ सकते हैं। और ये ऐसा उन्होंने क्यों समझा रूप गोस्वामी ने, नित्यानंद प्रभु कहा आप इस पर कृपा कीजिए इस बच्चे पर, तो उन्होंने क्या किया होगा। बलदेव प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी संधिनी शक्ति के अधिष्ठाती देवता हैं, तो संधिनी शक्ति का बल दे दिया। ललता सखी जी विशाखा जी को अर्थात वो राय रामानंद अद्वैताचार्य बक्रेश्वर पंडित इत्यादि जितने प्रवीण वैष्णव महाप्रभु के नित्य परिकर थे उन्होंने अपनी भी कृपा करी और कहा कि तुम लोग भी इस पर कृपा करो जो हमारे मनोभीष्ट को ये प्रचार कर सके स्थापित कर सके। सब लोगों ने मिल करके उनको आशीर्वाद दिया महाप्रभु की इच्छा। काशी में उन्होंने काशी नहीं प्रयाग में उन्होंने कहा कि देखो मैं रस तत्व को तुमको चखाने के लिए थोड़ा सा विस्तार के साथ मैंने सूत्र के रूप में वर्णन कर रहा हूं। ये रस तत्व किसको कहते हैं, रस क्या है और रसमय उपासना क्या है, इसलिए प्रयाग में बैठ करके उनको कितना 5-6 दिन या 7 दिन
10 दिन
उनको वहां पर सुनाया रस तत्व उपासना कैसी। उन्होंने कहा तीन ब्रज की सेवाएं हैं प्रधान, सख बात्सल्य, किंतु सख और बात्सल्य भी जिनको स्पर्श नहीं कर पाता वो माधुर्यमयी उपासना है। उधर ऊना राष्ट्रीय
मंदिर में हो रहा
है तो क्या बतला रहा है
माधुर्य सुख जी से स्पर्श नहीं कर सकता,
ये भी स्पर्श नहीं कर सकता जिस भाव को वो माधुर्यमयी लीला माधुर्य रस मधुर रस। मधुर रस को भी दो विभाग कर दो, एक कमानुगा संबंधानुगा, संबंधानुगा में कमानुगा और तत्त्व इच्छा भाव में, उसमें भी जीवों का अधिकार तत्त्व भाव इच्छामय में है, अतः उन लोगों के ब्रजवासियों के विशेष करके गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा हो, विशेष करके श्रीमती राधिका जी का। ये श्रीलरूप गोस्वामी ने जगत में प्रचारित किया, नहीं तो कोई जानता ही नहीं ये क्या उसमें भेद है, ये कुछ नहीं लोग समझते, गोपियों में भी भेद है नहीं समझते। गोपियों को उन्होंने चार प्रकार के बतलाए, चार प्रकार बतला करके 360 प्रकार के गोपियों से बतला, और उन्होंने कहा जो कोटि कोटि प्रकार की गोपियां हैं जिसमें ये मुख्य हैं, कौन बतलाता कौन जानता था विश्व में। बिल्व मंगल ने भी थोड़ा सा किया नहीं किया कर सके, जयदेव जी भी इसके पहले स्पर्श करने की चेष्टा की किंतु नहीं स्पर्श कर सके। इसी तरह से चंडीदास इत्यादि भी महाप्रभु के समसामयिक से कुछ पहले थे नहीं कर सके, मध्वाचार्य रामानुज इत्यादि की तो बात ही क्या करें। यदि ऐसे ही हम मर्यादा मई श्रवण कीर्तन इत्यादि जो नवधा भक्ति है यदि हम लोग ये किया और इसी को हमने रूपानुगम मान लिया तो फिर इसमें मर्यादा मई में और उसमें अंतर क्या रहा, तत्वरूप गोस्वामी को हमने क्या पालन किया? एक रागानुगा है और एक ये लोभमय भक्ति है रागानुगा। बिना लोभ के ये नहीं होगा। ब्रज के भाव लोगों के जो परिकर हैं कृष्ण के नित्य परिकर, विशेष करके बात्सल्य सख्य बात्सल्य और मधुर, मधुर का स्पेशल रागानुगा हो सकता उसके लोभ को देख करके, जो कैसे वो कृष्ण की जसोदा मैया सेवा कर रही है, सीधाम सुबल इत्यादि कैसे कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान भी कैसे कर रहे हैं, द्वारका में महिषियां उनके पुत्र और नाती कृष्ण की कैसे सेवा कर रहे हैं, ये सब रागानुगा है। हनुमान का भी रखो, पूर्ण रूपे नहीं है किंतु आर्शिक रूप में नहीं होने से कोई वहां जा नहीं सकता, बैकुंठ में, बैकुंठ में नहीं जा सकता। इसलिए रागानुगा तो है, पूर्ण रूप से रागानुगा ब्रज में है और ब्रज में भी उन गोपियों में रागानुगा, वो लोग हैं रागात्मिक। ब्रज में वहां रागानुगा नहीं है, रागात्मिक है। और इस जगत में उसके प्रति यदि लोभ होकर के उसका साधन भजन उसके अनुसार में यदि करे, कृष्ण का चिंतन और गोपियां जो उनके अनुरूप जो सेवा करती हैं उनके अनुसार में यदि कोई स्मरण और चिंतन करते हुए यदि करे इन भावमयी सेवा, तब तो उसको प्राप्त कर सकता है। बिना गोपियों के ब्रज में विशेष करके इस रस में किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। राधा जी को बतलाया लता और
प्रेम पत्ते
और पुष्पम और मंजरी,
पल्लव पुष्प गोपियां,
ये गोपियां और मंजरियां हैं तत्त्व भाव इच्छा में। किसी भी ग्रंथ में, वेदों की तो बात क्या, भागवत इत्यादि में भी, किसी भी ग्रंथ में भी, भरत के नाट्य इत्यादि में भी जो श्रृंगार रस के सबसे बड़े माने जाते हैं, इन लोगों ने कहीं इन सब चीजों का वर्णन नहीं किया जो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी की कृपा से उद्दीप्त होकर के जो उन्होंने किया। जो लोग रागात्मिक भक्तों के की सेवा को देख करके उनसे मुग्ध हुए हैं, लोभ से रागानुगा भक्ति आरंभ करेंगे और ये होगी रुचि से आरंभ होगी। उसमें तीन नीचे के जो हैं और दीक्षा इत्यादि स्थूल और नर्थन्य वृत्ति, इसके बाद में निष्ठा, ये सब नहीं है उसमें। जहां लोभ होगा अपने आप वो उस स्थिति में पहुंच जाएगी और अनर्थ उसके धीरे 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 सब कुछ जो कुछ थोड़ा सा है वो भी दूर हो जाएगा। वो रुचि से आरंभ होगी, गैलप करके चली जाएगी, तो वो उसमें हनुमान से भी ले लो, द्वारका का भी ले लो, और ब्रज में दास सख्य बात्सल्य तक का सबको ले। ये सभी रागानुगा हैं और वहां पर रागात्मिक हैं। हनुमान भी रागात्मिक हैं। हनुमान जी को कौन भक्ति के कोटि में रखा गया है?
प्रेमी भक्त,
प्रेमी भक्त रखा गया है, इसलिए वो भी हैं। किंतु भाई ब्रजवाला जो उन्नत जो भाव है वो उसमें नहीं है, राग में, वो गोपियों में ही है। इसलिए रागानुगा तो सब कहलाएंगे किंतु रूपानुग नहीं कहलाएंगे। रूपानुग एक स्पेशल चीज है। वो क्या है? रूप गोस्वामी का ने वर्णन किया ये सब रसों का वर्णन किया, सामग्री को भी बतला दीजिए ये कौन कौन सा सामग्री मिलकर के ये सब रस हुआ। किंतु रूप गोस्वामी का अपना भाव क्या है ये देखना पड़ेगा। जो रूप गोस्वामी के अपने खास जो स्वभाव है, रूप गोस्वामी है कौन? रूप, तो रूप मंजरी कैसे राधा कृष्ण की सेवा करती हैं और जहां पर उन्होंने वर्णन किया है या उनके अनुगत लोगों ने रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि जो वर्णन किया है, ये है असल में रूपानुगा। इसलिए मैं कहता हूं रागानुगा जितने हैं
रूपानुगा वो तो जरूर होंगे रागानुगा, किंतु प्रत्येक रागानुगा
रूपानुगा
नहीं हो सकता है, वो स्पेशल है उनका भाव। रूप गोस्वामी ने शांत दास सख सबका वर्णन किया, वर्णन करने पर भी उन्होंने इसका पार्थक्य भी दिखलाया है रामचंद्र जी के भावों से, द्वारका के भावों से, ब्रज के कृष्ण का वैशिष्ट इत्यादि दिख रहा है। और सब रसों का वर्णन किया, किंतु उनका अपना नहीं है वो, तटस्थ होकर के उनका विचार किया। और जब अपना जो भाव है वो क्या, उत्कल उत्कल का बल्लरी में जाओ, उनके अपने भाव के जो ग्रंथ लिखे हैं किसमें, दो ललित माधव और उसमें जाओ, उसमें भी स्पष्ट नहीं दिया। ये उत्कल का बल्लरी है, रूप गोस्वामी के और भी काशु पुष्पांजलि ग्रंथ है, उनके श्लोक हैं, या ऐसे ऐसे जो हैं वो उन्होंने अपना हृदय खोल करके उसमें भरा है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रधान रूपानुग है उनको प्रणाम करते हैं इस मंत्र से, रूप मंजरी प्रथिता पुरेशमिन पुंसः परसनम नहीं पश्यसीति बिंबाधरे खतम अनागत भर्तृकाया यत्ते बधाय स्मृति। गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, इनके गुरु ये हैं, शिक्षा गुरु हैं, सब कुछ यही है, यही पर वैशिष्ट है भागवत परंपरा का, अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। इसके दूसरे श्लोक में भी प्रणाम किया, फल कमलिनी युक्त गर्भिता, उसमें राधा जी का भी है और इनका भी है। और कहा क्या है? ये महाप्रभु उनके रूप गोस्वामी के भाव, तवई वास्मी रघुनाथ दास गोस्वामी ने, आशा भरई अमृत सिंधु मयई कथंचित कालो मयात गमिता अखिल संप्रतम ही त्वंचे कृपामयी विधर्ष स्ने प्राणी ब्रजेन बरूर बकारिना। कृष्ण से भी जरूरत नहीं है, वृंदावन से जरूरत नहीं है, राधा कुंड से जरूरत नहीं है, हे श्रीमती किशोरी जी यदि आपकी कृपा नहीं हो। ये रूप गोस्वामी का अपना भाव है, उसको रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का देखेंगे रूप गोस्वामी का कैसा सुंदर प्रणाम किया है। यह रूप गोस्वामी का अपना निजस्व भाव है। ऐसे लोग जो हैं ये रूपानुग हैं। कोई कोई कहते हैं कि जी गोस्वामी रूपानुग नहीं है, यह अत्यंत भ्रामक रूप है, उन्होंने कुछ जो भेद दिखलाया, उन्होंने प्रक्रिया स्वकिया में रूप गोस्वामी को वो गुरु नहीं मानते, सर्वत्र मानते हैं। उन्होंने तत्व की दृष्टि से स्वकिया को, और वो भी स्वकिया माने ये स्वकिया नहीं जगत का, परलोक का स्वकीय भाव, राधा जी तो कृष्ण की ही हैं, ये तत्व से विचार किया। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रूप गोस्वामी का विचार करके लीलागत और रसगत वैशिष्ट दिखला, इसलिए दोनों में एक एक ही है, कोई अंतर नहीं है। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी का नाम क्या है,
विलास
मंजरी, बाला बाल पुलाव, तो ये विलास मंजरी होकर के रूप मंजरी का ये विरुद्ध आचरण करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने ये सब ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, जानते नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी उलाट कर ये पुस्तक नाम की कोई चीज है ये सब, वो लोग भड़कते हैं। यदि महाप्रभु के संप्रदाय में आकर के रूप गोस्वामी से कोई संबंध नहीं हुआ, उनके विचारों से संबंध नहीं हुआ, रघुनाथ दास जी से नहीं हुआ, जी गोस्वामी से संबंध नहीं हुआ, तो उनको तो डूब मरना चाहिए, उनको नहीं कहना चाहिए जो हम गौड़िया वैष्णव है या रूपानुग हम वैष्णव है। रूपानुग तो जायज देते हैं, किंतु रूप गोस्वामी के इन विचारों से कोई भी लेना देना संबंध नहीं है। इसलिए रूप हम चैतन्य महाप्रभु के परिवार में रूप गोस्वामी के विशेष करके अनुगत्य में, और हमारे समस्त गुरु वर्ग रूप गोस्वामी से लेकर के नीचे तक अभी तक सभी रूपानुग अपने को कहते हैं, उनके विचारों को, जैसे कि हमारे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी की चरण धूलि ही हमारी जीवन की आकांक्षा और कामना है। अब क्या लिखे, वो क्या लिखे इससे अधिक। इसलिए आज हम रूप गोस्वामी के इस समाधि पर, समाधि माने क्या, ऐसा मत समझिए कब्रगाह जैसा उनको गाड़ दिया गया, खबरदार ऐसा करेगा तो महाअपराध हो जाएगा। समाधि में नहीं, जहाँ पर उनकी समधि समानीकरण जहाँ पर हुआ है, किसे श्रीमती जी के भावों से रूप मंजरी का, जहाँ पर भावों का समानीकरण होकर के उनकी समस्त इच्छाओं की सेवा कर रही हैं, कोई बाह्य ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं समाधि। इसलिए ये समाधि है। ऐसा मत समझो कि अंतर ध्यान होने के बाद में उनके प्राकृतिक शरीर को लेकर के मट्टी में दे दिए जाते ये समाधि हो गई, ऐसा मत समझो। इन लोगों का ऐसा कभी नहीं होता है। ये तो दुर्जनों को और विमुखों को ऐसा मोहन करने के लिए ये सब है। समाधि में इसी स्थान पर इन्होंने समाधि अच्छा राधा कृष्ण के चित्त वृत्ति के अनुसार में अपने चित्त वृत्ति को कर, तुम्हारी इच्छाएं मोर
इच्छा मिलाए,
जैसे राधा जी चाहती हैं ऐसे उनकी ये सेवा करती हैं। उनकी सामनी जी कौन है? राधा जी। कृष्ण कौन है? हमारे स्वामिनी के प्रियतम है, बस यही संबंध, और कोई संबंध नहीं। ये रूप गोस्वामी का अपना भाव है। इन सब भावों को जो लेकर के भजन साधन करेगा वो रूपानुभव हो सकता है। और जिनको इनसे संबंध नहीं है, हम लोग जिस स्थान पर आए हैं उनकी यहीं पर भजन स्थली है और यहीं पर इनकी समाधि है, वो भजन और ये भजन माने वो संख्या पूर्वक नाम गान नतभी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार आदि, और वहाँ पर भी हे राधे ब्रज देवी के ये चिंतन करके रो रहे हैं, भाव में भी भोर है वो साधन। और यहाँ पर क्या है? करते 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 एकदम होकर के तन्मय होकर के वहाँ समाधि हो गए। ये स्थान आज इस स्थल को हम लोग प्रणाम करें। अब वहाँ चल करके हम लोग इसके विषय में विस्तृत कुछ करेंगे, वहाँ पर सनातन जी का भी देखेंगे और लोग भी दर्शन करेंगे, हम उनके बाधक नहीं होंगे। अभी वहाँ चल करके हम लोग उनका दर्शन करेंगे दादा दामोदर जी का। तो पहले ये सेवा कुंज है पूरा, जहाँ से हम लोगों का मठ है और जो सेवा कुंज है वहाँ से लेकर के ये सब सेवा कुंज कहलाता है। और इसी में रूप गोस्वामी जी यहीं पर भजन करते थे। उस समय मंदिर पंदिर कुछ नहीं था, जिस समय केवल कुंज थे, उन कुंज में रह करके ये सब सेवा करते थे। अभी निर्दर्शन स्वरूप यही एक और यही तमाल कृष्ण कुंज तमाल वृक्ष बचे हैं। यही खाने रूप गोस्वामी विष्णु वैष्णव राज्यसभा यहीं पर, और यहीं पर सभी लोग एकत्रित होते थे। और यहीं पर कभी कभी गोपाल भट्ट जी, भागवत
रघुनाथ भट्ट जी,
और यहीं पर रूप सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी,
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी,
जीव गोस्वामी बच्चे सबके सबकी सेवा करते थे। भक्ति गोस्वामी सिंधु यहीं पर लिखा आरम्भ
हुआ।
हाँ, बल्लभाचार्य यहीं पर आए थे, यहीं पर उनका हुआ था। मीरा भाई भी यहीं पर आई थी, जीव गोस्वामी से बातचीत हुई थी। ये सब प्राचीन स्थान है, वो कोई मंदिर फंदिर कुछ नहीं था। इसके बाद में जब भजन करते 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 राधा गोविंद जी का वहाँ पर स्थापित हुआ, और वहाँ पर पीछे से फिर सनातन गोस्वामी जी का हुआ, मदन मोहन जी, और अंत में रूप गोस्वामी ने अपने आप गिरिराज जी की शिला और उसी पर लेकर के अंकन किया। तो ये राधा दामोदर जी इतनी छोटी सी विग्रह बड़ी सुंदर, और उसी को यहाँ पर जीव गोस्वामी के सेवा के लिए भजन, तुम इसकी सेवा करो अपने आप
के।
छोटा सा इतना सा है, वो जयपुर में सुरक्षित है।
यानी गोवर्धन शिला को उन्होंने चित्रांकन करके
प्रकाश किया, गोवर्धन शिला ही वो है। और ये स्वयं राधा दामोदर जी के रूप में उन्होंने अपने हाथ से प्रकाशित किया उसमें। और उसके बाद में जबकि आक्रमण मुसलमानों को हुआ, उसके पहले में जयपुर नरेश इन सब को लेकर के चले गए। और वहाँ पर
गोविंद जी का कैसे हुआ?
गोविंद जी वो एक ही साथ में सब गए,
वो भी हाथ नहीं, हाथ से उन्होंने
किया। वो तो उनके बद्रनाथ जी के, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गौर प्रमाण।
रघुनाथ भट्ट पाठ करते करते एक समय गोस्वामी मेरा केंद्र संदेह रूप गोस्वामी किया
यही पर। यहीं पर एक समय में रूप गोस्वामी जी की सभा लगी हुई थी और सुबह सभा में रघुनाथ भट्ट जी पाठ कर रहे हैं और सब वैष्णव लोग सब बैठे हुए हैं। उनका पाठ सुन करके जबकि कृष्ण अंतर ध्यान हो गए रासलीला से और उसका जब वर्णन करने लगे तो सभी लोग रोने लगे, कहीं आंसू में आंसू, किसे नाक से लाला गिरने लगा, कोई रोमांच, कोई पुलकित, कोई कुछ न कुछ, नहीं किसी को बाह्य ज्ञान नहीं, कोई लौटने लगा जन्म। और रूप गोस्वामी चुपचाप ऐसे बैठे हुए, किसी ने देखा जी सब ये रूप गोस्वामी ऐसे बैठे हुए क्यों, इनको कुछ नहीं हो रहा। तो जाकर के देखा, यहाँ हाथ लगाया तो वो जल गया सांस से, मैंने उनको होश नहीं है, उनसे भी बहुत ऊंचे। उपमा दिया जैसे थोड़ा सा पानी रहे तो थोड़ी सी मछली यदि
गुंड से जल मारती न सफरी पर
तो वो थोड़ा सा ऐसे करती है तो उसमें कीचड़ हो जाएगा, मैला पानी हो जाएगा। और जहाँ पर अगाध समुद्र है, काफी से को ओशन कितना 30,000 फीट से भी अधिक गहरा, उसमें फैल मछली भी कुछ नहीं कर सकती है, उसका पता नहीं कितनी लाखों कोटि उसमें भरी पड़ी है। ऐसे और जो हैं भक्त लोग, उनका हृदय में जो रस विचार है वो थोड़ा सा है, इसलिए थोड़े से में ही ये उथल पुथल हो जाते हैं। और रूप गोस्वामी का ये भक्ति रस स्वामी सिंधु को उन्होंने धारण किया, उसमें थोड़ा सा कुछ होने का बहुत अधिक समस्त भावों को अपने के अंदर में रोड़ीभूत कर लिया। ऐसे रूप गोस्वामी की क्या हो, रूप गोस्वामी की
जय।
उनकी तिरोभाव तिथि परिकर रूप गोस्वामी की जय। उनकी समाधि पीठ की जय। उनके भजन स्थली की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौ प्रणाम। छोर की देख के दमन करा चाहिए। बाको वेग मनसा क्रोध वेग जीवा उदरो पस्त वेगम इत्यादि एगुली क्रोध हरे सब गुली द्वेष हिंसा निंदा इत्यादि काम क्रोध लोभ मद मोह मास दे भी रहे। क्रोध रहे तो समझो जैसे भी भक्ति वृत्ति नहीं हुई। क्रोध किस लिए होता है, क्रोध किसे जन्म है, संसारी कामना वासना और विशेष है प्रतिष्ठा जन्म। प्रतिष्ठा लाभे तो जेखने व्याघात है सेखने क्रोध उपस्थित है। जन काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य हमारे हरिनाम तो एक ही हरिनाम कर ले, एक कृष्ण
नाम करे
सर्व पाप नाश, प्रेमे कारण भक्ति करना। कृष्ण नाम की बड़ी शक्ति है और हम लोग इतना दिन से हरिनाम कर रहे हैं तब तो ताले हमारा देर क्या ना हो छे ना तबे जानो तहां से अपराधे प्रचुर कृष्ण नाम भी कहे ना करे। हम लोगों में हृदय में कुछ अपराध है, अनर्थ है, नर्थ के दूर होने पर भी अपराध रह जाता है, समझ में नहीं आता कि कब का अपराध है, कौन कौन जन्म का या इस जन्म का कौन है। इसलिए ये विशेष करके ये सब चीज जानना चाहिए, अपराध किसको कहते हैं, अनर्थ किसको कहते हैं, नहीं तो भक्ति हृदय में नहीं आएगी। और यदि अनर्थ ही बढ़ता जा रहा है, अपराध ही बढ़ता जा रहा है तो भक्ति वृत्ति कहाँ से आएगी कोमल। इसलिए खूब अच्छी तरह से विचार करके भक्ति की तरफ में हम लोगों को बढ़ना चाहिए, तब तब व्यास पूजा संभव होगी, गुरु पूजा संभव होगी। गुरु नहीं शिक्षा देता जब परस्पर में द्वेष हिंसा कलह ये सब करो, यदि वो देता है तो क्या समझना चाहिए, यथार्थ गुरु नहीं है। इसलिए व्यास पूजा के दिन अंततः हम लोगों को ऐसे ही विचार करके गुरु पूजा में हम लोगों को प्रवेश करना चाहिए, तब तक गुरु पूजा होगी व्यास जी की पूजा होगी। प्रभुपाद जी ने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बहुत प्रकार की शिक्षा दी इसके विषय में। प्रभुपाद जी तो कहते हैं जैसे हमने शिष्य नहीं किया, हमने सब गुरु किया, और सब शिष्यों को देखकर कहते हैं जिनसे हरि कथा उदित होती है उन सबको प्रणाम करते हैं, ये सब तो
ये सब है कहा, ये सब चीजों को ग्रहण करना चाहिए, तब तो भक्ति राज्य में भाई हम लोग प्रवेश करेंगे, अन्यथा प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन। हम लोग को जानना चाहिए ये शुद्ध भक्ति क्या चीज है। हम लोग स्वरूप सिद्धा भक्ति को, संग सिद्धा भक्ति को भक्ति समझ लेते हैं, पहला ये समझ जाएगा कोई उपाय नहीं है, किंतु वैष्णव के संग से हम शुद्ध समझेंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन दाष्टाख्यात्म निवेदन, और इनमें भी पांच, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मुक्ति श्रद्धा सेवन, इन पांच चीजों, ये कितनी शक्ति है कि सत्य सत्य प्रेम उत्पन्न कर, यदि नाम अपराध न हो तो। इसमें हम लोगों को प्रवेश करने की चेष्टा करनी चाहिए। इनमें भी सबसे श्रेष्ठ बतलाया श्रवण कीर्तन और स्मरण। भगवान का नाम रूप गुण लीला का पहले श्रवण, सुत गृह सया, पहले सुने गुरु मुख से, वैष्णव के मुख से सुने, और इसके बाद में ग्रहण करे, तब ये सुत गृहित होगा, सुनाई नहीं तो नहीं। इसलिए पहले कीर्तन करने की भी पहले, हरिनाम करने के पहले सुनो ये हरिनाम तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है। इन तीनों में भी नाम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम और नामी तब समझ करके ऐसा नाम करेगा उसको भक्ति का स्वरूप, भगवान का स्वरूप सब कुछ उसके अंदर में। यह है शुद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा, और औपाधिक भक्ति अथवा आरोप सिद्धा भक्ति ये नहीं, किंतु दूसरे दूसरे जो उपाधियां हैं उसी को ही भक्ति मान करके हम उसमें चलते हैं। संग सिद्धा किसको कहते हैं, खूब दीनहीन है, चुनादपि सुनीच है, दूसरों को सम्मान भी देता है, दयालु है, उपकारी है, सब कुछ है, किंतु अभी भक्ति की धारा उसमें प्रवेश नहीं की गई। भक्ति के साथ में रहने पर तो वो भक्ति है, और भक्ति ज्यादा हट गई, केवल एक आदमी खूब दयालु है, खूब दीनहीन भी है और भक्ति नहीं है, तो उसे क्या लाभ। एक आदमी सदाचारी है, हमारे गीता में तो कहते हैं कि अपि दुराचार, दुराचार से भी युक्त हो और अनन्य रूप में भजन करने वाला है उसको साधु ही समझो, क्योंकि धीरे धीरे साधु हो जाएगा सत्सना। किंतु इन लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए संग सिद्धा नहीं, आरोप सिद्धा भी नहीं, था भक्ति की जरूरत है। महाप्रभु जो शिक्षा दिया उसको ग्रहण करते हुए यदि चल सके, यही व्यास योगी की शिक्षा, इसका पालन करना ही गुरु जी की पूजा, व्यास की पूजा है। जो पालन नहीं करता केवल जानता है, ऐसा जानने से नहीं होगा, अपने जीवन में वो लाना होगा। यदि हम लोग थोड़ा से भी ला सके तो व्यास पूजा हो जाएगी, गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, वैष्णव और भगवान सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। आज यही कहकर मैं डॉक्टर समाप्त करता हूँ।
अब चले
हम लोग गंभीरा की ओर जाते हैं, हम लोग जाके सुनेंगे श्री महाराज श्रीमुख से, श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में क्यों रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका भावधारा है, इसके बारे में हम आप लोगों को सब साथ लेकर के महाराज का अनुगत में गंभीरा का भाव सुनने के लिए चल रहे हैं। हरे कृष्ण।
सबसे पहले आकर के दर्शन किया गंगा जी का, भाव ये और करके दिया पड़े, इसके बाद में भक्ता जारी देखा, जैसा ऐसा तो जीवन में हमने कभी देखा नहीं, ऐसा भाव अष्टसात्विक भाव शास्त्रों में लिखा है, और धुमाई इत्यादि जगत में कहीं कहीं देखा है थोड़ा सा, किंतु दीप्त प्रदीप्त उदीप्त ये कहीं नहीं देखा, आज इनको देख रहे हैं, उससे भी
में श्रीमती राधिका में जो भाव उत्पन्न होते हैं सब किसी मनुष्य में ऐसा संभव नहीं है, किंतु इसमें दिखा है, किंतु ये नहीं आया कि ये भगवान हो सकते हैं,
ये विचार में नहीं आया।
साधारण भक्त समझा और उतने ही सुंदर जब जो रक्षा करते हैं डंडा दे करके फटा हुआ
फटफट शब्द
आशीर्वाद देते हैं तो उनको देखा जैसे ये साधारण से आ गया और उसको वहाँ पर रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया, ये भाव आवेश करिए तब वहाँ उठा करके पकड़ करके जबरदस्ती बाहर कर रहे थे। साधु भट्टाचार्य जी ने उनको रोक दिया और अपने परिकरों के साथ में उनको अपने घर में ले गई है। वहाँ
गंगा माता मठ
तो गई है, गंगा माता था स्वामी के यहाँ ले गए अपने घर पर। तब तक और भक्त लोग सब आ गए और कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते 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 उनको होश आया, धंड होकर के नृत्य करने लगे, फिर शांत हुए। साधु भट्टाचार्य ने कहा कि अब अकेले मत जाना, मैं जाऊंगा दर्शन करूंगा नहीं तो हम अपने किसी आदमी से करा, अकेले मत जाना और उनको वेदांत सुनाना चाहे। नया सन्यासी है ये अपने सन्यास को रख सकेगा या नहीं कोई ठीक नहीं, संसार के की आसक्तियाँ बड़ी प्रबल होती हैं, नारद जी जैसे लोगों को भी व्यस्त कर देती हैं। विलेज का अभी तो 24-25 वर्ष का नौजवान लड़का है, ये संसार में नहीं जा सकता, इसलिए इसको वेदांत सुनाना अच्छा है। सुनने आप हमारे पिता और गुरु तुल्य हैं, सुनाएंगे हम सुनेंगे। 7 दिन तक उनको सुनाया और द्वैत बात शंकराचार्य जी की व्याख्या जो उस दिन पंडित थोड़ा थोड़ा बतला रहा था सुनाया।
वो जो किताब देखे गए उसमें तो पूरा ही है
सुनाया। महाप्रभु जी ने एक एक विचार का उसका खंडन कर दिया, हमारा विचार खंडन करने वाला तो संसार में कोई है नहीं। उनको आश्चर्यजनक हुआ, इसमें उन्होंने अपना रूप दिखलाया, भाव होकर के निश्चित होकर के गिर पड़े। अब समझा कि हाँ ये भगवान है, जो बिना मुख हाथ धोए स्नान किए हुए प्रसाद नहीं लेते थे, महाप्रभु जी सवेरे एक दिन प्रसाद लेकर के पहुंचे और साथी साथ लिया। तब देखा जी हाँ अब भक्ति का उन्मेष इनमें हुआ। तब उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि राय रामानंद नाम के एक हैं मेरे मित्र हैं, उनको मैं पागल समझता था, अब समझा कि वो महापुरुष हैं, साधारण आदमी नहीं है, अब उधर जाएंगे तो उनको दर्शन। महाप्रभु जी ने कहा कि हमारे लिए आपका परिवार में रहना ठीक नहीं है, हमारे लिए एक स्थान होना चाहिए निर्जन। तो उनके गुरु थे राजा जी के गुरु काशी मिश्र,
राजा जी मतलब प्रताप
रुद्र के, जब आते थे वहाँ से कटक से जरूर यहाँ आकर के अपने गुरु जी को चरण दबाते थे, सेवा करते थे, खिलाते थे और फिर उनका आदेश लेकर के तो मंदिर में जाते थे।
मंदिर जाने से पहले
जाने से पहले और जब कभी प्रसाद प्रसाद हो जाता प्रसाद पाते अपने गुरु जी का चरण जरूर दबाते, उनकी सेवा करते प्रताप। उन्होंने कहा उनसे राजा से पूछे ही बिना, एक तरह से मालिक थे उनके ऊपर में बहुत
चार रही है और कुछ चार को बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है? प्रभु कदम्बा।